सोचिए किसी शहर को एक दुश्मन सेना ने पूरी तरह से घेर लिया है, चारों तरफ उद्ध डर का माहौल है।
बिल्कुल, और ऐसे माहौल में इंसान पैनिक तो करेगा ही।
हाँ, और आमतौर पर ऐसी स्थिति में इंसान का पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? ये नहीं कि शहर की ऊंची दीवारों के पीछे छुप जाओ जहां सेना है और सुरक्षा का एक एहसास है।
राइट, एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है।
लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को एक ऐसी चेतावनी मिलती है जो कहते हैं कि जब शहर को घेर ले तो शहर के अंदर भूल कर भी मत जाना, बल्कि सीधे जंगल और पहाड़ों की तरफ भागना।
सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, मतलब काउंटर इंट्यूटिव है।
एग्जैक्टली, ये एडवाइस सुनने में कितनी अजीब लगती है ना, लेकिन करीब 2000 साल पहले यही वो सटीक एडवाइस थी जिसने हजारों लोगों की जान बचाई थी।
हाँ, और आज हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं।
सही कहा, आज हम जिस टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं वो डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा मैथ्यू 24 और 25 अध्यायों पर दिया गया एक बेहद रोचक लेक्चर है। इस डिस्कशन में हम बाइबल के सबसे गहन और भविष्यवाणियों से भरे हिस्सों पर बात करेंगे,
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
हाँ, हमारा मकसद प्राचीन जेरूसलम के पतन के ऐतिहासिक तथ्यों को समझना है, साथ ही दुनिया के अंत से जुड़ी गलतफहमियों को सुलझाना और कुछ मशहूर पैराबल्स यानी कहानियों के असली अर्थ को उजागर करना है।
और ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि एक इतना पुराना टेक्स्ट हिस्ट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कितना कुछ सटीक बताता है।
बिल्कुल, चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
ये सच में एक माइंड बेंडिंग टॉपिक है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जीसस की ये चेतावनी किसी फिलोसफिकल विचार की तरह नहीं थी।
अच्छा, तो किस तरह की थी?
ये एकदम प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्रेटजी की तरह थी। देखिए, डॉक्टर कीनर इसकी शुरुआत 66 AD के एक हिस्टोरिकल इवेंट से करते हैं।
66 AD यानी फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं आप?
हाँ बिल्कुल, उस वक्त जूश देशभक्तों ने, जिन्हें जीलोट्स कहा जाता था, उन्होंने मंदिर के अंदर ही अपने विरोधी पुजारियों को मार डाला था।
बाप रे, मंदिर के अंदर! ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप था।
बिल्कुल, उस समय के मशहूर इतिहासकार जूसीफस ने इस घटना को एक विनाशकारी अपवित्रता यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोफिनेशन का नाम दिया था। और इस घटना के ठीक 3.5 साल बाद जेरूशलम का वो महान मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया।
वेट, 3.5 साल बाद? ये टाइमलाइन इतनी स्पेसिफिक थी?
हाँ, और लोग यही सोचते थे कि रोम की सेना आएगी, घिरा डालेगी, कुछ दिन बाद थक जाएगी और वापस चली जाएगी।
लेकिन एक मिनट, ये पहाड़ों की तरफ भागने वाली बात का लॉजिक क्या था? जैसे मैंने पहले कहा, लोग तो आमतौर पर किले या शहर के अंदर पना लेते हैं जब कोई हमला होता है।
लॉजिक बिल्कुल प्रैक्टिकल था। रोम की मिलिट्री टैक्टिक्स अलग थी। उन्होंने जेरूशलम को तब तक घेरे रखा जब तक अंदर लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने नहीं लगे।
ओ वाओ, तो शहर एक सुरक्षित जगह बनने के बजाय एक डेथ ट्रैप बन गया था।
एग्जैक्टली, रोम की सेना के लिए वो एक बड़ा सा पिंजरा बन गया था जहां लोग कैद हो गए थे। दूसरी तरफ पहाड़ों पर भागना इसलिए समझदारी थी क्योंकि वहां गिरेला वॉरफेयर बहुत आसान थी।
क्योंकि पहाड़ी रास्ते पतले और उबड़ खाबड़ते हैं, राइट?
सही कहा। रोम की भारी भरकम सेना वहां एक साथ अटैक नहीं कर सकती थी। ऊपर छुपे हुए लोग आराम से पत्थर गिराकर उन्हें रोक सकते थे।
अरे वाह, ये तो सच में मिलिट्री लेवल की स्ट्रैटेजी थी। डॉक्टर कीनर के लेक्चर में इस भागदड़ और जल्दबाजी का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
हाँ, बहुत विविड डिस्क्रिप्शंस हैं।
जीसस ने अपने फॉलोवर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि जल्दबाजी इतनी जरूरी है कि अगर कोई अपनी छत पर बैठा है तो वो अपना सामान लेने घर के अंदर बिल्कुल ना जाए।
अब आज के हिसाब से सोचे तो अजीब लगता है, पर उस वक्त की छतें फ्लैट होती थी।
हाँ, जहाँ लोग आमतौर पर सब्जियां सुखाते थे या शाम को बैठते थे। और सबसे बड़े बात, छत से नीचे आने की सीढ़ियां घर के बाहर से होती थीं।
यानी इंस्ट्रक्शन ये था कि छत से उतरो और बिना घर के अंदर झांके सीधे शहर के बाहर भागो।
और मैं सोच रही थी कि जो लोग खेत में काम कर रहे हैं उन्हें भी अपना कोट या क्लोक लेने वापस नहीं आना चाहिए था।
बिल्कुल, उस जमाने में एक आम गरीब इंसान के पास वही एक क्लोक होता था जो रात को उसका बिस्तर बनता था। दिन में काम करते वक्त वही उसे खेत के किनारे छोड़ देते थे।
पर चेतावनी थी कि उस क्लोक को भी छोड़ दो, बस जान बचाओ।
ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे आपके घर में आग लगी हो।
सही एनालॉजी है।
और लोग अपना स्मार्टफोन, वॉलेट या लैपटॉप उठाने के बजाय सीधे बाहर भागें। जान सबसे कीमती है, बाकी सब छूट जाए तो कोई बात नहीं।
और इस भयानकता को एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट देने के लिए डॉक्टर कीनर ने अपनी पत्नी का एक बहुत ही प्रभावशाली निजी उदाहरण शेयर किया है।
हाँ, मैंने वो सुना। उनकी पत्नी अफ्रीका में सिविल वॉर के दौरान रेफ्यूजी थी ना?
हाँ, करीब 18 महीने तक उनके सभी पड़ोसी भाग चुके थे, चारों तरफ गोलियों और बॉम्ब गिरने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन वो और उनकी बहनें भाग नहीं पा रही थीं।
क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उनके पिता आधे लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज थे और उन्हें उठाकर भागना नामुमकिन था। अंत में एक अनजान व्यक्ति आया और उसने पिता को एक व्हील बैरो यानी ठेले में डालकर जंगल की तरफ उनकी जान बचाई।
ओह माय गॉड, ये तो बहुत इंटेंस है।
और ऊपर से उनकी पत्नी के पीठ पर एक छोटा बच्चा भी बंधा हुआ था। जीसस ने विशेष रूप से अपनी चेतावनी में यही कहा था कि ऐसी स्थिति में प्रेग्नेंट औरतों और छोटे बच्चों वाली माओं के लिए भागना कितना मुश्किल और दर्दनाक होता है।
सच में बहुत दर्दनाक। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया था कि प्रार्थना करो कि यह भागदड़ सर्दियों में या सैबत के दिन ना हो।
अब विंटर्स का तो हम समझ सकते हैं।
हाँ, कि नदियों में उफान होता था और कच्चे रास्ते कीचड़ से भरे होते थे, उससे ट्रैवल करना फिजिकली मुश्किल हो जाता था। पर सैबत का क्या कॉन्टेक्स्ट था?
सैबत यानी उनका पवित्र दिन। उस दिन ज्यूइश रिलीजियस लॉज के मुताबिक कोई भी काम करना या लंबा सफर करना सख्त माना था।
अच्छा, तो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन की वजह से।
वो तो था ही, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सैबत के दिन शहर के बड़े दरवाजे बंद रखे जाते थे।
अगर दुश्मन पीछे पड़ा है और आपको भागना है पर शहर का दरवाजा ही लॉक है तो आप क्या करेंगे?
बाप रे, दैट इज टेरिफाइंग। और लेक्चर में कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं जो इस टेरर को बिल्कुल रियल बनाती हैं। एक कहानी योचनैन बेन ज़ेकाई की है ना?
हाँ, वो कहानी तो बहुत फेमस है।
शहर के अंदर हालात इतने खराब थे कि ज़ीलॉट क्रांतिकारी किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। उनका कहना था कि या तो हमारे साथ मरो या दुश्मन कहलाओ।
तो इस व्यक्ति ने लिटरली अपनी मौत का नाटक किया। सच में उसके शिष्यों ने उसे एक ताबूत में लिटाकर शहर से बाहर निकाला, गार्ड्स को ये कहकर कि पवित्र शहर के अंदर मुर्दा नहीं रख सकते। और जैसे ही वो बाहर पहुंचा, वो वहां से भाग खड़ा हुआ।
और जो लोग सच में शहर से निकलने में कामयाब हो जाते थे, उनका अंजाम और भी खौफनाक हो सकता था।
वेट, उनके साथ क्या होता था?
रोमन सेना में काम करने वाले कुछ सीरियन सिपाहियों ने भागने वालों का पेट चीरकर उन्हें मारना शुरू कर दिया था।
व्हाट? पेट चीरकर? ये क्यों?
ऐसा इसलिए था क्योंकि एक अफवाह फैली हुई थी कि जेरूसलम से भागने वाले अमीर लोग अपने कीमती गहने और सोने के सिक्के निगल कर भाग रहे हैं,
ताकि पकड़े जाने पर उनकी दौलत बची रहे। ओ माय गॉड।
हाँ, इसे अफवाह की वजह से उन सिपाहियों ने हर भागने वाले रेफ्यूजी को काटना शुरू कर दिया। जेरूसलम से जिंदा बच निकलना लगभग एक चमत्कार जैसा हो चुका था।
अगर मैं उस दौर में होती और ऐसी तबाही देखती जहाँ शहर जल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं और ऐसी बेरहमी हो रही है, तो मुझे 100% लगता कि बस यही दुनिया का अंत है।
बिल्कुल, किसी को भी यही लगेगा।
इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और शायद यही से उन गलत फहमियों का सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चला आ रहा है।
एग्जैक्टली।
और यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जेरुसलम का पतन इतना कैटेस्ट्रॉफिक था, उस वक्त के ईसाई और यहूदी सच में इसे दुनिया का अंत समझ बैठे,
जो कि बहुत नेचुरल रिएक्शन था उनके हिसाब से।
पर डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि जीसस ने अंत और अंत जैसी लगने वाली घटनाओं के बीच एक बहुत बड़ा अंतर बताया था। युद्ध, भूकंप और भूखमारी, ये सब अंत के संकेत नहीं है।
तो ये क्या है? शुरुआत कहा, जैसे एक नई दुनिया आने से पहले का दर्द। ये घटनाएं पहली शताब्दी में भी हो रही थी और आज भी लगातार होती हैं।
ये पॉइंट मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। हम लोग आज भी यही करते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, हम हर बड़ी चीज को एंड ऑफ द वर्ल्ड मान लेते हैं।
जैसे ही कोई पेंडेमिक आता है या कोई बड़ा वॉर शुरू होता है, व्हाट्सएप और इंटरनेट पर डूम स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है। मैसेजेस आने लगते हैं कि द एंड इज नियर।
सही बात है।
लेक्चर में 1400 के दशक के पोर्चुगल के भूकंप का जिक्र है, जिसने ऐसी तबाही मचाई कि उस वक्त के लोगों ने उसे अपोकलिप्स मान लिया। हम हर बड़ी आपदा को अल्टीमेट आखिरी घटना क्यों मान लेते हैं?
देखिए, इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि इंसान हमेशा अपने टाइम को ही सबसे इम्पोर्टेंट मानता है। जो दर्द और डर हम अभी झेल रहे हैं, वो हमें सबसे बड़ा लगता है।
ये तो एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी है।
डॉक्टर कीनर बताते हैं कि उस जमाने के झूठे भविष्यवक्ता लोगों को डराने के लिए अजीब अजीब संकेत बताते थे,
जैसे आजकल टैबलॉइड या क्लिकबेट खबरों में होता है।
एग्जैक्टली। जहां म्यूटेंट बच्चों या अजीबोगरीब घटनाओं को दुनिया के अंत का संकेत बताया जाता था, लोग डर के मारे ऐसी अफवाहों पर यकीन कर लेते थे।
तो अगर वॉर्स और अर्थक्वेक्स अंत का संकेत नहीं है, तो असली संकेत क्या है?
एकमात्र सच्चा संकेत ये था कि जब तक किंगडम यानी ईश्वर के राज्य का शुभ समाचार पूरी दुनिया में सभी लोगों तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अंत नहीं आएगा।
यानी गॉस्पल का फैलना सबसे जरूरी था।
हाँ, तबाही और डिजास्टर तो हिस्ट्री का पैटर्न है, लेकिन असली अंत एक विश्वव्यापी संदेश के फैलने पर निर्भर करता है।
और जब वो रिटर्न होगा, जीसस की वापसी होगी, तो वो कैसा होगा?
लेक्चर क्लियरली कहता है कि वो घटना कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय होगी, बिजली की तरह आसमान में सबको दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई गांव में या डेजर्ट में आकर चुपके से कहे कि मैं आ गया हूँ।
यानी अगर वो सबको आसमान में नहीं दिख रहा तो वो असली नहीं है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
अब यहाँ एक नया सवाल उठता है, अगर अंत का एक कॉस्मिक इवेंट होना तय है तो उस वक्त इंसानों का क्या होगा जो लोग उन पर विश्वास करते हैं? क्या उन्हें इस भारी संकट और तबाही से पहले ही बचा लिया जाएगा?
और यही पर एंट्री होती है रैप्चर और ट्रिबुलेशन यानी महाकलेश के उस मैसिव डिबेट की जिसने हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया।
हाँ, ये थियोलॉजी का काफी डिबेटेड हिस्सा है।
पॉल की चिट्ठियां विशेषकर फर्स्ट और सेकेंड थेसलोनियंस इस विषय पर मैच करती हैं। वहां एक कंसेप्ट है जिसे बाद में लैटिन शब्द रैप्चर से जाना गया, जिसका मतलब है हवा में उठा लिया जाना।
लेकिन सबसे बड़ा विवाद इस बात पर नहीं है कि ये होगा या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि ये कब होगा, है ना?
एग्जैक्टली। और डॉक्टर कीनर यहाँ हिस्ट्री का कैसा फैक्ट बताते हैं जो बहुत लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है।
हाँ, मैंने वो सुना।
मैं हमेशा से यही सोचती थी कि संकट आने से पहले ही अच्छे लोगों को ऊपर उठा लिया जाएगा,
जिसे प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहते हैं।
राइट।
लेकिन लेक्चर बताता है कि 1830 में जॉन नेल्सन डार्बी नाम के एक व्यक्ति ने ये थ्योरी दी थी।
हाँ, ये उस वक्त एकदम नई थ्योरी थी।
वेट, होल्ड ऑन, आप कह रहे हैं कि लगभग 1800 सालों तक किसी भी अर्ली क्रिश्चियन ने ये नहीं माना कि उन्हें संकट से पहले बचा लिया जाएगा?
नहीं, किसी ने नहीं। 1830 से पहले की हिस्ट्री में लगभग सभी बिलीवर्स यही मानते थे कि उन्हें भी बाकी दुनिया के साथ इस भारी संकट और ट्रिबुलेशन से गुजरना ही पड़ेगा।
बाप रे, ये तो पूरी हिस्ट्री को ही बदल देता है।
और 1830 के आसपास डार्बी की थ्योरी आई और आग की तरह फैल गई।
तो अचानक ये एस्केप वाली थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों हो गई? क्या लोग सिर्फ दुख झेलने से डरना चाहते थे?
अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इसका साइकोलॉजिकल रीजन बहुत क्लियर है। एस्केपिज्म किसको पसंद नहीं है?
ये भी है, कंफर्ट सबको चाहिए।
एक ऐसी थ्योरी जो आपको ये कंफर्ट दे कि दुनिया चाहे जल जाए पर आपको एक स्क्रैच भी नहीं आएगा, ये एक सोते हुए इंसान के लिए बड़ी राहत की बात होती है।
पर इस एस्केप थ्योरी की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है ना?
बहुत ज्यादा। डॉक्टर कीनर एक बेहद दर्दनाक ऐतिहासिक कहानी शेयर करते हैं। चाइना में माओ के दौरान जब कम्युनिस्ट रेड गार्ड्स ने वहां के लोगों पर भयंकर जुल्म शुरू किए तो पश्चिमी देश के मिशनरीज वहां से चले गए।
वही मिशनरीज जिन्होंने उन्हें ये एस्केप वाली थ्योरी सिखाई थी?
हाँ। और बाद में जब सालों बाद वो वेस्टर्न मिशनरीज वापस आए तो वहां के टॉर्चर झेल चुके चाइनीज लोगों ने उन्हें ताना मारा।
उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने रोते हुए कहा, तुमने तो कहा था हमें संकट से पहले ऊपर उठा लिया जाएगा, जब तुम अचानक गायब हो गए तो हमें लगा तुम्हारा रैप्चर हो गया और हमें यहाँ अकेले जुल्म झेलने के लिए छोड़ दिया गया।
ओह माय गॉड, ये सच में दिल तोड़ने वाली बात है।
इतिहास गवाह है कि लोगों ने हमेशा दुख झेला है। ये कभी नहीं सिखाया गया था कि आपको दुख का बायपास मिल जाएगा। उन्होंने बस ये प्रॉमिस किया था कि दुख के उस पार जीत है, शॉर्टकट कोई नहीं है।
कैसे एक गलत एक्सपेक्टेशन लोगों के दुख को और बढ़ा सकती है? अब अगर हमें संकट से गुजरना ही है और हमें नहीं पता कि अंत कब आएगा, तो सवाल ये है कि इस बचे हुए समय में हम करें क्या?
और यहाँ डॉक्टर कीनर हमें मैथ्यू 25 के 3 कहानियों यानी पैराबल्स की तरफ ले जाते हैं। ये कहानियाँ हमें तैयारी का असली मतलब समझाती हैं।
पहली कहानी वो 10 कुवारियों यानी ब्राइड्स माइड्स की है ना?
हाँ, ये कहानी आमतौर पर काफी सिंपल लगती है। ये आमतौर पर टीनेज लड़कियां होती थी और उनके पास मशाले या टॉर्चेस थी।
और मिडिल ईस्ट के उस जमाने में गांव में शादी के जश्न तो लगभग 7 दिन तक चलते थे।
सही कहा। 5 लड़कियां तैयार थीं, उनके पास एक्स्ट्रा तेल था और 5 तैयार नहीं थीं। दूल्हे के आने पर जो तैयार नहीं थीं, उन्हें जश्न के बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया गया।
अब अगर आज कोई हमें किसी पार्टी से बाहर निकाल दे तो हम शायद घर जाकर आराम से नेटफ्लिक्स देख लें, पर उस जमाने में इसका इम्पैक्ट क्या था?
उस जमाने के छोटे से गाँव के माहौल में एक टीनेज लड़की के लिए पूरे समाज के सामने रात के अंधेरे में शादी के जश्न से बाहर निकाल दिया जाना एक भयानक शर्म की बात थी।
यानी शेम सोसाइटी के सामने।
ये कोई छोटी पेनल्टी नहीं थी, ये सामाजिक रूप से एक एब्सोल्यूट हॉरर था। ये पैराबल वार्निंग दे रहा है कि प्रिपरेशन को हल्के में लेने का अंजाम कितना डेविस्टेटिंग हो सकता है।
उसके बाद आती है मेरी फेवरेट कहानी, टैलेंट्स यानी सिक्कों की।
हाँ, ये भी एक बहुत डीप पैराबल है।
इसमें एक मालिक सफर पर जाने से पहले अपने नौकरों को कुछ पैसे या टैलेंट्स देकर जाता है। 2 नौकर उस पैसे को इन्वेस्ट करके डबल करते हैं।
बट तीसरा उस पैसे को जमीन में गाड़ लेता है।
राइट, और मैंने हमेशा यही सोचा था कि वो बेचारा डर गया होगा कि पैसे डूब ना जाए, पर लेक्चर यहाँ एक कम्प्लीटली नया एंगल पेश करता है।
यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि उसने डर के मारे ऐसा नहीं किया, उसने बाद में मालिक से जो कहा वो सुनिए। उसने कहा, तुम बुरे इंसान हो इसलिए मैं तुम्हारा पैसा नहीं बढ़ाऊंगा।
यानी उसने मालिक को ओपन चैलेंज किया।
बिल्कुल, जमीन में पैसे गाड़ना, वो भी एक कपड़े में लपेट कर, ये सुरक्षा नहीं थी, ये मालिक के मुंह पर एक खुला अपमान था। वो सीधे शब्दों में कह रहा था कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा प्रॉफिट नहीं करूंगा।
ओ वाओ, तो ये हाइडिंग नहीं थी, ये ओपनली बगावत थी।
हाँ, ये एक डायरेक्ट इंसल्ट थी।
ये बिल्कुल वैसा ही है कि आज के कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई एम्प्लॉई किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को इंटेंशनली खराब कर दे या उस पर बिल्कुल काम ही ना करे क्योंकि उसे अपना बॉस पसंद नहीं है।
हाँ, ये क्वाइट क्विटिंग का एक एक्सट्रीम रूप था उस जमाने में।
वो एम्प्लॉय सीधे तौर पर कह रहा है कि मैं अपनी स्किल्स और टाइम का इस्तेमाल तुम्हारे फायदे के लिए नहीं करूंगी, और लेक्चर यही समझाता है कि ईश्वर के दिए गए रिसोर्सेज, टैलेंट और टाइम को बर्बाद करना असल में उनका अपमान करना है।
और इस बात का वजन तीसरी कहानी में और बढ़ जाता है, भेड़ो बकरियां यानी शीप एंड गोट्स वाली कहानी,
जिसमें जजमेंट के वक्त उन्हें अलग अलग दिशा में रखा जाता है।
हाँ, जब वक्त आता है तो भेड़ों को दाहिनी तरफ रखा जाता है और बकरियों को बाईं तरफ। उस एंशिएंट कल्चर में दाहिनी दिशा को अच्छा और हाईली फेवर्ड माना जाता था।
और वहाँ वो मशहूर वाक्य आता है ना, जो तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों के साथ किया वो मेरे साथ किया, यानी द लीस्ट ऑफ दीज।
सही पकड़ा, इस फ्रेज पर दुनिया भर में बहुत काम हुआ है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ गरीब, भूखे और बेसहारा लोगों से है,
जैसे मदर टेरेसा ने भी माना था और इस पर अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, और वो एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है।
पर डॉक्टर कीनर और बाकी हिस्टोरिकल स्कॉलर्स इसका एक और डीपर हिस्टोरिकल मीनिंग बताते हैं।
अच्छा, वो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है?
ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में इन छोटे भाइयों का मतलब असल में धर्म प्रचारक यानी मिशनरीज थे। ये वो लोग थे जो अपना घर बार और आरामदायक जिंदगी छोड़कर दूसरी कल्चर्स में वो शुभ समाचार फैलाने जाते थे,
जिसका जिक्र हमने पहले किया था असली संकेत के रूप में।
हाँ, इस सफर में उन्हें कई बार भूखा प्यासा रहना पड़ता था, नंगे पांव चलना पड़ता था और अनजान लोगों के रहम पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें प्रिजन में भी डाल दिया जाता था।
यानी इन प्रचारकों का स्वागत करना, उन्हें सपोर्ट करना, असल में उस संदेश को और खुद उन्हें स्वीकार करना था।
बिल्कुल, यही इसका कोर मीनिंग है।
अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न बनता है, चाहे वो तैयार न रहने वाली लड़कियां हों, पैसे गाड़ने वाला नौकर हो या मिशनरीज को इग्नोर करने वाले लोग, इन सब में एक ही चीज कॉमन थी।
और वो चीज क्या थी?
इनएक्शन। कुछ ना करना, खाली बैठे रहना या इनडिफरेंट रहना ही सबसे बड़ा खतरा है। आपको जो भी मिला है आपको उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल, और यही पॉइंट हमें लेक्चर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है
कि इतनी सारी थ्योरीज में सच को कैसे पहचाने।
हाँ, जब लीस्ट ऑफ दीज का मीनिंग गरीब वर्सेस मिशनरी हो सकता है या रैप्चर की 1830 की थ्योरी वर्सेस एंशिएंट बिलीफ हो सकती है, तो एक आम इंसान सच कैसे पता लगाए?
जब एक्सपर्ट्स के इतने मतभेद हैं तो सच्चाई का असली अधिकार आखिर किसका है?
ये आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले जमाने का सबसे बड़ा सवाल है। हर दिन कोई नया इन्फ्लुएंसर या नया लीडर एक नई थ्योरी लेकर आता है। डॉक्टर कीनर ने यहाँ अपनी एक बड़ी पर्सनल कहानी शेयर की।
हाँ, वो अपने शुरुआती दिनों की बात करते हैं ना।
बिल्कुल, जब वो नए थे तो उनके ऊपर एक प्रचारक ने बहुत हैवी प्रेशर डाला था। उसने कहा कि देखो, सब अच्छे लोग इस रैप्चर वाली थ्योरी को मानते हैं, तुम्हें भी मानना पड़ेगा।
पीयर प्रेशर एक तरह से।
बिल्कुल, डॉक्टर कीनर डर गए थे, उन्हें लगा कि मैं अकेला क्यों अलग सोच रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने सोसाइटी के प्रेशर में आने के बजाय खुद ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें क्लियर हो गया कि सच कुछ और ही था।
यही तो प्रॉब्लम है, हम दूसरों की बातों पर ज्यादा जल्दी यकीन कर लेते हैं बजाय खुद वेरीफाई करने के।
और इसी बात पर जोर देने के लिए वो दो बेहतरीन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला है बेरियंस का, जिनका जिक्र एक्ट्स की किताब में आता है।
इनके बारे में क्या खास था?
ये लोग ऐसे थे जो किसी की भी बात, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, आंख मूंद कर नहीं मानते थे। वो घर जाकर खुद टेक्स्ट की जांच करते थे कि जो सिखाया जा रहा है वो सच है या नहीं।
ये एक ऐसी स्किल है जो आज के डिजिटल एज में सबसे ज्यादा जरूरी है, फैक्ट चेकिंग।
और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है?
दूसरा एग्जाम्पल है राजा जोसाया का, सेकंड किंग्स 22 की ये कहानी तो बहुत पावरफुल है।
सोचो, एक पूरी सोसाइटी अपने सिस्टम को फॉलो कर रही है, पर मंदिर के अंदर से सडनली कानून की असली किताब मिलती है जिसे लोग भूल ही चुके थे।
वेट, उन्हें पता ही नहीं था उस किताब के बारे में।
हाँ, और जब राजा ने उसे पढ़कर सुना तो उसने दुख और पश्चाताप में अपने कपड़े फाड़ दिए।
कपड़े फाड़ दिए? क्यों? इतना क्या लिखा था उसमें?
क्योंकि उसे सडनली एहसास हुआ कि जो परंपरा वो लोग सालों से फॉलो कर रहे थे वो असली इंस्ट्रक्शन से कितनी अलग थी। वो कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक थे।
ये तो वेकअप कॉल थी एक तरह से।
यही डॉक्टर कीनल का मेन कंक्लूजन है। ट्रेडिशंस और पॉपुलर थियोरीज चाहे कितनी भी कंफर्टिंग क्यों ना हो, ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कैनन ही एक फाइनल मेजरिंग स्टिक या पैमाना है,
यानी स्रोत पर वापस जाना।
हाँ, हम चाहे कितनी भी अलग बैकग्राउंड से आते हों, जब मतभेद हो तो हमें वापस मूल शब्दों पर, ओरिजिनल टेक्स्ट पर आना चाहिए।
तो आज के इस डीप डाइव से हमने काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि 66 AD में जेरूसलम का पतन कितना टेरिफाइंग था,
जहाँ लोगों को पहाड़ों की तरफ भागना पड़ा।
हाँ, और हमने समझा कि युद्ध और भूकंप दुनिया का अंत नहीं बल्कि जन्म की पीड़ा है।
और रैप्चर की नई थियरी का हिस्ट्री भी समझा।
एग्जैक्टली, कि एस्केप की उम्मीद कैसे रियलिटी से दूर कर देती है। और एंड में कहानियों से हमने सीखा कि तैयार रहने का मतलब डर कर छिपना नहीं बल्कि एक्टिव रहना।
सही बात है, अपनी रिसोर्सेज को सही जगह इन्वेस्ट करना।
लेकिन इस सब के बीच एक थॉट है जो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है।
वो थॉट क्या है?
अगर इस पूरे डिस्कशन से हम एक चीज समझें तो वो ये है कि अंत का सच्चा संकेत भूकंप, तबाही या डूम स्क्रोलिंग नहीं है। असली संकेत है प्रेम और उम्मीद के संदेश का पूरी दुनिया में फैलना।
ये तो है।
तो सोचिए, क्या आज की दुनिया जो हमेशा एपोकलिप्टिक डूम यानी कलयुग की तबाही के डर में जीती है, उसने उस असली संदेश को पूरी तरह से गलत नहीं समझ लिया है?
ये एक बहुत ही डीप पॉइंट है।
डर बांटने की जगह अगर हमें उम्मीद बांटने को कहा गया था, तो क्या आज लोग वही गलती नहीं कर रहे जो पहली शताब्दी के झूठे भविष्यवक्ता कर रहे थे? शायद एपोकलिप्स के डर से बाहर निकलकर उम्मीद पर फोकस करना ही हमारी सबसे बड़ी तैयारी होगी। जरूर सोचिएगा।